जो गिरे क्या जादू है तेरे प्यार में, क्या जादू है तेरे जोग में। और सच्चा जोगी तो अंतर्यामी परमात्मा ही सबका अंतर देवता है, उसी में विश्रांति पहुंचता हूं। आप भी जोगी जोगी फेंफू करना इसका नाम जोग नहीं है, ये तो प्राणायाम है। वास्तव में भगवान को पाकर भगवान में विश्रांति करना जोग है। भगवान की सत्ता, भगवान की चेतना, भगवान की मधुरता में अपना झूठ कपट अहंता डुबाकर निर्दोष हो गए और भगवान में विश्रांति पाई, अनंत ब्रह्मांडों में फैला हुआ अपना भगवत स्वभाव पाया, उसी को बोलते जीवन जीने की कला। बाकी तो थोड़ा बजाया गाया फेंफू किया, ये एक प्रकार का आम आदमी को फुसलाने का कला है। सच्ची कला है परमात्मा साक्षात्कार करना, असली आर्ट है ईश्वर का साक्षात्कार करना। बाकी सब मैं आर्टिस्ट हूं, मैं फलाना हूं, मैं ठिंगना हूं, मैं ये आर्ट है, ये फलाना है, सब ये भी संसार के अंतर्गत आ जाता है। सच्ची आर्ट है श्री कृष्ण, श्री राम, राजा जनक, लीलाशाह बापू, सब कुछ करते हुए निर्लेप नारायण को जो कत्य जानते, ये असली आर्ट है, यही असली योग है। बाकी सब अपनी अपनी जगह पर ठीक। जो गिरे क्या जादू है तेरे ज्ञान में, क्या जादू है तेरे जोग में, क्या जादू है तेरे प्यार। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम ओम आनंद दाताय नमः। यस्य स्मृति मात्रेन मुच्यते सर्व बंधनात्। उसके संदूक में स्मृति का सामान था, कितना बड़ा ऊंचा बना दिया भगवत स्मृति, गुरु स्मृति, उसको कितने मायावी नगरी नगर बंबई में ऊंचे पद पे कुछ भी कर सकता था, लेकिन बर्बाद भी ऐसे ही होता, और जो करना चाहिए वो किया तो आबाद भी ऐसे ही हो गया। कपट नहीं किया गुरु से।
बापू जी बहरो बहु हारू लागे, बहरो तुम तसली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो, बहु हारू लागे।
आज रे आनंद भाई हमारा गुरुजी आया पामना, एक मंत्री था वो सोचता था कि मैं राजा का मुख्य मंत्री भी हूं सचिव भी हूं, लेकिन आयुष्य बर्बाद हो रही है, मुझे अपनी आत्मा का उद्धार करना चाहिए, मुझे संत बनना चाहिए, फकीर बनना चाहिए। उस मंत्री का नाम था ताहिर साहेब, सब उसे ताहिर साहब बोलते थे, ईमानदार था। आयुष्य नष्ट हो रहा है, राजमहल की सुविधाएं हैं, लेकिन जिंदगी तो अपनी खत्म हो रही है। लोग ताहिर साहब अपने स्वार्थ से सलाम मारते, आयुष्य तो मेरी खत्म हो रही, मैं तो गुरु के द्वार जाऊं, वहां का झाड़ू लगाऊं, बुहारी करूं, दीक्षा लूं, साधना करूं, भगवान को पाऊं, लेकिन मेरा इतना महल मारी गुरु नहीं रहने दे तो क्या खाऊंगा, ऐसा उसके मन में हो गया। गुरु भाई लड़ेंगे, वो सीनियर हैं हम जूनियर होंगे, तो ये सब छोड़ के जाऊंगा तो मैं कैसे जीऊंगा, ऐसा सोच विचार में खोया खोया रहता था, विचार विचार में खोया खोया रहता। भोजन करने बैठा तो बिल्ली आई, म्याऊ, भूखी है, एक टुकड़ा डाला, बिल्ली ने उठाया और भागी, फिर आई म्याऊ, दूसरा, ऐसे करके 6 टुकड़े डाले, बिल्ली ले जाए और छोड़ के आ जाए वारंग में, बिल्ली वारंगी। ताहिर ने सोचा कि इसको टुकड़ा देते ही कहां दे आती है, किसको रख के आती है, इतनी देर में तो खाया नहीं मेरे सामने, लेके भागी और छोड़ के आई, कहां ले जाती है। ताहिर साहब बिल्ली के पीछे पीछे गया, देखा तो एक कमरे में अंधी बिल्ली बैठी है। आंख वाली बिल्ली के हृदय में प्रेरणा करता है वो परमात्मा की अंधी है, इसको खिला, अंधी बिल्ली की रक्षा करने वाला और मां के गर्भ से बालक के लिए दूध बनाने वाला भगवान हमारा है, वो हम कैसे भूल गए। जन्म लेता नहीं साथे हमारा माटे दूध बनाए हुए अंतर्यामी को हम क्यों भूलते हैं। अंधी बिल्ली को ये टुकड़े दिया, ऐसी प्रेरणा आंख वाली बिल्ली को कौन देता है, और गुरु के हृदय से कौन ऐसा दिव्य ज्ञान देता है। वो अंतर्यामी परमात्मा, और फिर भी हम दुखी और झगड़ाबाजी करें, धिक्कार है हमको। न झगड़े करेंगे, न निंदा करेंगे, न भगवान का भरोसा छोड़ेंगे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। ताहिर ने रोटी खाई न खाई चल पड़ा, तो चल पड़ा, राजपाट का त्याग कर दिया, मंत्री पद का, अमीरी की तो ऐसी की सब पद लुटा बैठे, और फकीरी की तो ऐसी की के गुरु के द्वार आ बैठे। जूते की सेवा मिले तो कर ले, पानी पिलाने की सेवा मिले तो कर ले, झाड़ू लगाने की सेवा मिले तो कर ले, और समय मिले तो ध्यान और गुरु का सत्संग कर ले। ताहिर को पता चला कि मरने वाले शरीर से मैं अमर आत्मा हूं, ये ज्ञान पाने के लिए शरीर मिला था, मंत्री होके भोगी बनकर नरकों में जाने के लिए शरीर नहीं मिला है। जो भोगी बनते मजा लेते तो मरने के बाद नरक में पड़ते, फिर भूंड होते, कुत्ते होते, बिलार होते, सियार होते। मैं भोगी बना तो मेरी दुर्दशा होती, मैं तो अब गुरु के द्वार का जोगी बना हूं। ताहिर तो वही के वही, लेकिन नजर बदल गई। मनुष्य तो वही का वही, समझण ऊंची थे जय पटी गये, नीचे समझण एटले कूतरानी जेम लड़े, कूतरानी जेम खाए पे, ऊंची सब समझण एटले देवनी जेम भगवानी भक्ति में आवी जाए। समझण ऊंची एटले बधु ऊंचू, समझण हल्का एटले बधु हूँ नीचू। बलाड़ी ने जोईने समझी गया, लो बलाड़ी ने जोईने ताहिर साहब समझी गया, तो तमे गुरु ने जोईने तो सुधरी जाओ। सुधरवानी सीजन छे, पेलो बलाड़ी ने जोईने सुधरी जाना, आप गुरु ने जोईने ना सुधरन पे। आप 8 वर्ष न खाड़ो 2 मिनिट ना अशुद्धार्थी उभराई गयो, अने प्रेम रूपी परमात्मा बन्ने कुटुंबा चर उतर करे, जेम सागर में बर्फ ना टुकड़ा कूदे ने, एम आनंद आनंद। वहु ने आनंद, सासू ने आनंद, ससरा ने आनंद, जमाई ने आनंद। आज रे आनंद भयो, मारा सतगुरु आया, पामण मारा गुरु नु ज्ञान आई गयो। स्वर्ग मले न गुरु नु ज्ञान नहीं मले तो त्याय राग द्वेष थाय, पण नरक मले न गुरु नु ज्ञान होय तो नरक भी स्वर्ग थई जाय। गुरु नु ज्ञान एटले जोगी रे, क्या जादू है तेरे प्यार में, क्या जादू है तेरे ज्ञान में, क्या जादू है तेरे जोग में, और क्या जादू है तेरे संसार को सुंदर बनाने में। जगत का सुख लेने की इच्छा सारे दोषों को, सारी बुराइयों को, गंदी हरकतों को उजागर कर देता है। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में दुख ही दुख है। किसी सेठ साहूकार नेता राजा का सुमरण करो और काम ना करो तो वो गाली देगा, जूते मारेगा, निकाल देगा, केस करेगा कि मुफ्त का पगार खा गए, हमारा काम नहीं किया। लेकिन भगवान का सुमरण मात्र से दोष तो भगवान हरते हैं और योग और क्षेम वाहन करते हैं, हमारा बोझा उठाते हैं। संत तुलसीदास के यहां चोर आए रात्रि को, राम और लक्ष्मण पहरेदार के रूप में देखकर वे लोग छुप गए कि अभी पहरेदार आगे पीछे होंगे, हम जाएंगे। जब जब आए तो पहरेदार तीर कमान कसे हुए तैयार मिले। रात भर कई बार चोर आए और राम लखन का पहरा देखकर चोर चोरी से तो विफल हो गए, सुबह फुट फुट कर रोए तुलसीदास के चरणों में, कब हम आए थे चोरी करने को लेकिन तुम्हारे चौकीदारों को देख देख के अब हमें रहा नहीं जाता, उनका एक बार दर्शन करा दो। तुलसीदास बोलते हैं ऐसे कौन से चौकीदार थे, मैंने तो कोई चौकीदार रखे नहीं है। बोले गौर वर्ण थे और एक श्याम वर्ण थे। गौर वर्ण श्याम वर्ण थे, दोनों भाई जैसे लग रहे थे, तीर कमान कसा हुआ और चौकने थे। तुलसीदास जी तनिक शांत हुए तो समझने में देर नहीं लगी कि भगवान ने गीत गाया है, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है उसका योग मानो उसे क्या जरूरत है। कब उसे उल्लास उदार वातावरण की जरूरत है, कब उसे कसकर उन्नत करने की जरूरत है, वो भगवान जानते। योग क्षेम वाहामी हम, उसे कौन से चीजों की कौन से वातावरण की जरूरत है वो भगवान जानते। तो ये गुरु पूनम आई इसलिए लोग दे गए होंगे, तो चोरों को चोरी करने की इच्छा हुई होगी, भगवान राम और लखन चौकीदार बन गए। मैं भी कैसा परिग्रही के ठाकुर जी को मेरी संपत्ति की चौकी करनी पड़ती है, फुट फुट कर रोए। भगवान का सुमरण करने मात्र से सद्गुण तो आते हैं, सद्बुद्धि भी आती है, सच्चरित्र भी आते हैं और सत्य का संग करके भगवान के स्वरूप को भी व्यक्ति पा लेता है, जान लेता है। और भगवान में रुचि नहीं रखी और भगवान की जगह मिल गई पुजारी को, मंदिर मिल गया, आश्रम मिल गया, चर्च मिल गया, मठ मिल गया, और भगवान में रुचि नहीं है तो वहां भी गड़बड़ी हो जाती। एक प्रसिद्ध कई जगह पर उनके मंदिर है, एक प्रसिद्ध मंदिर का एक साधु आए, घंटों भर तो बाहर इधर उधर बैठे रहे। जब मैं भक्तों से मिलने गया, भक्तों को नजीक से दर्शन वर्शन हो जाता, उस साधु ने मुझे मिठाई का डब्बा दिया जिसमें मिठाई वाले मिठाई पैक करके देते हैं, डब्बा स्टील का नहीं था, वही पुठे का डब्बा। बोले बाबा जी ये आपके लिए है। मैंने कहा साधु कपड़े में है, चलो देता है प्रसाद के, प्रसाद है, महाप्रसाद है, ले लिया। बोले आपके लिए स्पेशल है। मेरे को एक धक्का लगा, आप ही खाना, आपके लिए स्पेशल है। तो मैंने उसको वो प्रसाद थमा दिया, मैं कहा तू खाना, ठाकुर जी को खिला। जो वस्तु केवल मेरे लिए है, मेरे लिए स्पेशल है, किसी का हक नहीं है, वो भगवान की वस्तु हो ही नहीं सकती। ईश्वर में मन हो तो सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा, जिसको गरज होगी वो आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। वो इतना उदार और इतना अपना है कि आप उसके साथ हुज्जत कर सकते हो। जब भक्ति में दिखावा हो जाता है और धर्म के नाम पर अपना उल्लू सीधा करने का उद्देश्य हो जाता है, तो उल्लू सीधा करने वाले उल्लू बन जाते हैं। ईमानदारी से ईश्वर में प्रीति हो। अब ईमानदारी से ईश्वर में प्रीति नहीं है तो क्या करें? तो बेईमानी से जगत को चाहते हैं तो भी जगत मिलता है, तो भगवान को बेईमानी से ही चाहो। चलो बाबा जी, मेरा मन भगवान में नहीं लगता, झूठ में बहुत लगता है। बाबा जी चतुर थे, बोले झूठ में तो लगता है ना, लगने दो। सिंहासन बनाओ, सियाराम जी का राज्य अभिषेक हुआ है और आप जॉक्स झूठ कपट की कल्पना करके और ठाकुर जी के प्रसन्नता के लिए आप डायरा कर रहे हैं। गुजरात में क्या डायरो, वाणिया रे वाणिया तू जात्राए जाए, सुखी दुबाए वाणिया रे वाणिया तू जात्राए जाए, ने तीजो मले ओ चोर मारो हेलो सांभळो, हो मारो हेलो सांभळो। अजमल जी ना बेटा वीर हमना, वीरा राणी जेतन मसरदार, मारो हेलो सांभळो, आ मारो हेलो सांभळो, हो मारो हेलो सांभळो, ए मारो हेलो सांभळो रे। है तो सरासर कल्पना, लेकिन दुल्हा भगत इससे प्रसिद्ध हो गए थे। मैंने दुल्हा भगत को सुना देखा, हम बच्चे थे, दुल्हा भगत बहुत प्रसिद्ध थे, कवि काग, दुल्हा भगत, पुनीत महाराज, अमृतलाल शास्त्री। आप भगवान के लिए, भगवान के विनोद के लिए डायरा अथवा कपोल कल्पित राग रगीनियां गाकर ये सोचो कि ठाकुर जी को मैं प्रसन्न करना चाहता हूं, है तो झूठ, लेकिन बीच में ठाकुर जी का स्मरण रख दो। महाभारत में आता है, यस्य स्मरण मात्रेण मुच्यते सर्व बंधनात्, जिसका स्मरण करने मात्र से संसारी बंधनों से वो मुक्त हो जाता है। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः, उस परमात्मा को नमस्कार। एक डेंटिस्ट डॉक्टर है, उसके हाथ के नीचे 15 डॉक्टर काम करते हैं। अब वो डेंटिस्ट डॉक्टर तो अपना क्लिनिक छोड़कर यात्रा को गया। जब आया तो डॉक्टर लोग और उसके असिस्टेंट 40-45 लोगों का स्टाफ नाश्ता वास्ता कर रहा है, तो बोले क्या करते हो क्लिनिक में, कितना धंधा हो? बोले डॉक्टर साहब, आप गए थे ना बद्रीनाथ, तब से हम आपका स्मरण करते, कोई काम काज नहीं करते। पेशेंट आते तो बोले नहीं, हम तो आपके स्मरण में हैं। तो क्या डॉक्टर उन कर्मचारियों को, डेंटिस्ट को रखेगा अपने पास? काम कर रहे नहीं, मारो सुमरण कर दो, डफोड़ छो, हमारी क्लिनिक बगाड़ी दी थी, घरेड़ा जवा छो। सेठ है बड़ा, उसका कारोबार है, और सेठ आता है कारोबार तुमको सौंप के चले जाता है 10-15 दिन के बाद। आप लोग कारोबार बंद करके सेठ का सुमरण करते, सेठ का कारोबार चौपट हो जाता है। वो सेठ आता है, क्या करते? बोले हम आपका सुमरण करते, तो सेठ के आपको पगार देंगे, इनाम देंगे, अथवा आपका योगक्षेम वहन करेंगे, आपका सर्व प्रकार से मंगल करेंगे, कि सर्व प्रकार से आपको पनिशमेंट देंगे? बोलो, दंड देंगे? लेकिन ये भगवान ऐसा है कि आप खाली स्मरण करो उनका, तो क्या भगवान चाटुकारी से इतने इम्प्रेस हो जाते हैं कि उनका स्मरण करो और सब कुछ दे देते? चाटुकारी से भगवान इम्प्रेस हो जाते ऐसा सोचना गलती है। आप भगवान का स्मरण करते तो आपके अंदर जो भगवान का स्वभाव छुपा है वो जागृत हो जाता है, तो जैसे भगवान के आगे प्रकृति सब अनुकूल कर देती है ऐसे आपके लिए भी सब भगवत सत्ता से अनुकूल हो जाता है। तो जिसका स्मरण करने से आपके अंदर उसके दिव्य गुण, आकर्षण शक्ति, पोषण शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति, वैदिक परंपरा रक्षण शक्ति, दुष्ट दमन शक्ति, उन्नीस प्रकार की शक्तियां अपने आप आपकी विकसित हो जाती है। खाली ओम ये पाणिनि मुनि का जो ग्रामर है उसमें ओमकार शब्द से जो तुम्हारे शरीर में ध्वनियां और जो केंद्र सक्रिय होते हैं उनसे 19 प्रकार की शक्तियां विकसित हो जाती है। रक्षण शक्ति ओमकार का गुंजन करते तो, गति शक्ति आपके मन बुद्धि की दिव्य गति होने लगेगी, कांति शक्ति उज्ज्वल आभा आपका व्यक्तित्व तो प्रभावशाली होगा। ऐ है कांति शक्ति, प्रीति शक्ति आपके हृदय में भगवत प्रेम, भगवत नाते सभी से मंगल। वैसे तो प्रेम तो सेल्समैन भी करते हैं, वैश्याएं भी करती हैं, नेता भी करता है, स्वार्थी लोग भी प्रेम करना जानते, लेकिन वो प्रेम नहीं है। प्रेम के नाम पर उल्लू बनते और बनाते हैं। सचमुच में प्रेम, जैसे माँ का प्रेम बच्चे का मंगल करता है, संत का प्रेम सत्संगी का मंगल करता है, ऐसे भगवत प्रेम समाज का मंगल करेगा। तो प्रीति शक्ति जागृत होगी। पांचवा गुण है कि तृप्ति शक्ति, आप अपने आप में संतुष्ट होंगे। हम 12 बजे सत्संग करके गए, अभी यहां तुम्हारे आगे 7 बजे आए, तो मुझे कोई टीवी की या अखबार की या किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ी क्या सुखी होने के लिए? नहीं, अपने आप में तो आप आए तो मुझे आना पड़ता, नहीं तो मैं एक महीना या एक साल, 10 साल या अब भी से पूरी उम्र या अकेले में तृप्त रह सकता हूं। आपको अंतर अंदर में तृप्ति नहीं तो फलाने के घर जाओ, फलानी चैनल खोलो, फलाने से गपशप करो, बाहर भटकता है। पान मसाला खाते तो अतृप्त व्यक्ति पान मसाला खाएगा, अपने आप में तृप्त व्यक्ति को पान मसाले की पिक्चर की जरूरत नहीं, उसको लाडे लाडी के शरीर को नोचकर मजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप में तृप्त है। सुख लेने के लिए पति पत्नी का शरीर का दुरुपयोग करते हैं, संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी का संयोग चलो, लेकिन सुख लेने के लिए अतृप्त आदमी करेगा चेष्टा। मानसिक तनाव से तना हुआ को सुरा और सुंदरी चाहिए, सुरा नहीं है तो पान मसाला चाहिए, पान मसाला नहीं है तो दूसरा कुछ टिंचर चाहिए। अतृप्त व्यक्ति को, तृप्त व्यक्ति को कोई जरूरत नहीं। जो साधक है अथवा जिन्होंने दीक्षा ली है, एमए पढ़ा एक फौजी गुर्जर मेरे पास आया कि बाबा हनुमान कैंप में हम फौज में हैं, अहमदाबाद में आए, दीक्षा ली उसके बाद मुझे दारू पीने की इच्छा नहीं होती, फौज में तो हमें दारू मिलता है, मीट मिलता है, ये क्या हो गया, अच्छा ही नहीं लगता। लोग हंसते दूसरे फौजी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा क्यों नहीं लगता है? नशा, न शांति, जिसमें शांति नहीं तृप्ति नहीं उसको बोलते नशा। और तुम्हें दीक्षा से शांति मिल गई, तृप्ति मिल गई, तो नशे की जरूरत नहीं गई। इसमें जादू कहो, कृपा कहो, भगवान की करुणा वरुणा अथवा भगवत स्वभाव कहो, वही बात है। तो प्रीति शक्ति और तृप्ति शक्ति आपकी जागृत हो जाती है। छठी शक्ति है अवगमन शक्ति, दूसरों के मनोभाव को जानने की शक्ति। कोई बोल रहा है कि आपकी कृपा हो गई, आप पहले जैसी गलती नहीं करता हूं, साईं जी दया है, आंटी फिर में फिर है। लेकिन आपका अंतरात्मा बोलेगा कि ये झूठ बोलता है, चलो मौका पाके निकाल देंगे इसकी ये गंदगी। आप जाने और उस समय बोले कि 10 साल के बाद बोले उसकी भलाई के लिए जैसा मौका। लेकिन आपको अवगमन शक्ति, मनोभावों को और दशा को जानने में देर नहीं लगेगी। प्रवेश अवंती शक्ति सर्व अंतः स्युत, जैसे आकाश आपके अंदर भी है बाहर भी है, ऐसे ही आप चिदानंद स्वभाव से एकाकार हो जाएंगे। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भावना आना। जो रोम रोम में ब्रह्मांडों में बस रहा है, उस आत्म स्वभाव को जानने वाला उसके रस के सिवाय कहीं फंसेगा नहीं उसका मन। ऐसे महापुरुषों के लिए अखा भगत ने कहा, राज्य करे रमणी रमे के ओढ़े मृगशाल, जो करे सो सहज में सो साहिब का लाल। साहिब का स्मरण करने से वो साहिब हो जाता है। कोई सेठ का स्मरण करके सेठ हो गया हो ऐसा मैंने नहीं देखा, लेकिन भगवान का स्मरण करके भगवतमय हो गया ऐसे मैंने कईयों को देखा सुना। सेठ का स्मरण करने से, पत्नी का स्मरण करने से, लवर का, लवरी का, नयन का चैन चुरा कर ले गई तो रो, कर गई नींद हराम सिर कूटो, ऐसा हो सकता है। लेकिन भगवान का स्मरण करने से बहुत बढ़िया नींद, बहुत बढ़िया समझ, बहुत बड़ा ज्ञान, बहुत बढ़िया पद और बहुत बढ़िया भगवत स्वभाव में जागृति हो जाती है। प्रवेश अवंती शक्ति सर्व अंतःस्युत शक्ति आपकी जागृत होती है। आठवीं शक्ति श्रवण शक्ति, सूक्ष्मतम देवताओं की मसलतें और सूक्ष्मतम किसी के मन के भावों को आप सुन लेंगे, समझ लेंगे। तो श्रवण शक्ति सूक्ष्मतम, फिर नौमा आएगा सामर्थ्य शक्ति अर्थात नियामक शासन, आपकी दृष्टि पड़ते ही जो होना चाहिए होने लगेगा और जो नहीं होना चाहिए रुक जाएगा। नियामक शक्ति, अब उठ के कोई पानी पीने जाए और कोई सिटी करने जाए मुश्किल है। डंडे के बल से लोग इतना अनुशासित नहीं रहेंगे जितना उस महापुरुष की दृष्टि और वाणी से अनुशासित हो जाएंगे। अनुशासित व्यक्तियों का मनोभाव ऊंचा होगा, बुद्धि ऊंची होगी, संयमी बन जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे। दसवां होगा याचक शक्ति प्रार्थनीय प्रदाता, आपको तो कोई कामना नहीं लेकिन कोई आपके नाम की मनोती मानता है या आपसे कुछ प्रार्थना करता है तो आप चलो पुत्र, पुत्र प्राप्ति वालों को पुत्र, शांति वालों को शांति, भक्ति वालों को भक्ति, सत्संग वालों को सत्संग, ज्ञान वालों को ज्ञान, मतलब याचक की मनोकामना तृप्त करने वाली बात तृप्ति शक्ति, कितनी बड़ी बात है। फिर ग्यारहवीं है क्रिया शक्ति, निरंतर आप क्रियारत रहेंगे, चाहे अपने ध्यान आनंद में माधुर्य में, चाहे समाज को मधुरता देने में, आप आलसी होकर नहीं पड़े रहेंगे। सामान्य आदमी 6-7 घंटा तो आलस में गुजार सकता है, लेकिन आप आलस में नहीं, प्रभु में या तो प्रभु के रास्ते जाने वालों की मदद में। बारहवां है इच्छित शक्ति अवंती, स्वयं निष्काम लेकिन शुभ इच्छा के प्रकाशक, दूसरों के रास्ते के रोड़े हटाकर उनकी शास्त्री ढंग से कामना तृप्त करने में। तेरहवीं होगी दीप्ति शक्ति, अंधकार नाशक, ज्ञान प्रकाशक शक्ति आपकी सुविकसित होगी। चौदहवीं है व्यापिनी शक्ति, जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त है ऐसे ही आपकी वो चिदघन चैतन्य अवस्था लोगों के अंदर और बाहर अपनत्व से आलिंगन करके बैठी होगी। अपना लगेगा, सबको लगेगा कि मेरे ऊपर ज्यादा कृपा है, मेरा ऊपर बहुत प्रसन्न है। वकील टोकता है कि क्या रोज रोज तुम्हारे बाप बाप के पास है, तो तुम चलो ना, मैं तो नहीं आने वाला हूं, तू जा। नवरी ने खोदी, बापू 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 बापू, पर एक बार तो तुम आई जो ना, विश्व आवे नहीं तारा जो बड़ो भगत मंदिर में जाऊ बापू पाए जाऊ हूं पैसा आ गया पैसा सूरती हो गया वकील पैसा पैसा नहीं मिलेगा पैसा आ गया जे पहारी नहीं मले ए मले है बापू पाए लाखों करोड़ों थी जे शांति ज्ञान अने परलोक की सदगति ये नहीं मले है ते मारा बापू पाए मले है। वकील साहब तुम हेडोन जो वकील साहब, वकील साहब चलो पिक्चर में जाइए, अपन तुम्हारी पिक्चर में हूं पछी आव हाँ अत्यार बापू नी पिक्चर में हेडोन तो सारू जा जा तू जा बहु डॉट डाई मन कहीश नहीं हो कोई दाड़े आश्रम आवन पहले विचार्यू के कहीश नहीं पर हूं तमने छोड़ी से नहीं ले ये कोई पाका गुरु नी चेली हसे तो ये वकील बैठा हो वकील बैठा हो खाता पीता हो तो उसके मगज के पीछे के बापू पास जाओ कथा सांभो एक बार जाई तो आओ एक बार जाओ तो खरा जुई तो आओ ऐसा वो मन में बोले। और वकील को देर सवेर अंतरात्मा की आवाज मिली एक दिन सुबह आज जवानी छे और मिला क्या कि चलो हूं आऊं हैं खरेखर क्या। तो वकील अपनी धर्म पत्नी के साथ कथा में आ गए और डॉक्टर डायमंड कहते रोक और पोप म्यूजिक से सत्यानाश होता है, पैरों की पानी और पैरों की पिंडियों में दर्द होता है खड़े खड़े भोजन करने से और पानी पीने से। और 42 साल के बाद तोबा पुकारते वकील के बाद तो सच्ची बोलते साइंटिफिक इज अ वेरी ग्रेट पर्सन। दो चार बात ऐसी सत्संग में आई कि वकील को लगा कि ये मेरे को जानते नहीं और मेरी हिस्ट्री कैसे बोल रहे हैं। जोगी रे क्या जादू है तेरे ज्ञान में, क्या जादू है तेरे जोग में, क्या जादू है तेरे प्यार में। दूसरा रविवार हुआ बोले चलो क्या किता सत्संग में, मेरे को तो टोकते थे अब मेरे को चलो चलो कहते क्या बात है कि चलो जय आइए। दो पांच इतवार मंगलवार जब मौका मिला आए कोर्ट में छुट्टी हड़ताल चलो। एक दिन कहते हैं कि चलो बापू के पास, बोले ऐसा बोलना नहीं बापू तो महाराज है, बापू तो मेरे हैं तुम्हारे थोड़े हैं। बोले पूछेंगे तेरे बापू को किसके हैं, मेरे को रात को सपने में आए मेरे बापू हैं। बोले तुम्हारी रात तो काले आया हमारी भाई घड़ी बार बापू आई गया पर तने नहीं की दुए वो मैंने जाहिर सत्संग में रुमाल में ढक कर मेरे को बापू सुनाते। हम जो आर्गुमेंट करते ने वो टोन में भी मर्यादा रमन की कथा मेरे को देख के करते और हंसते मेरे बापू हैं। वो पत्नी बोलती नहीं मेरे बापू हैं, वकील बोलता नहीं मेरे बापू है, चलो कि आज फैसला कराते। वकील तो वकील ठहरा कि बाबा आप मेरे बापू हैं कि नहीं। बोले क्यों वकील संदेह कर रहे हैं क्या। नहीं नहीं ये कहते मेरे बापू मैं इसको चैलेंज किया कि बापू तो मेरे हैं, ले खा मेरे बापू है तेरे ससरे लगते। भाई पूछते के बापू पहलवेला हूँ आवी अंत में एना बापू मारा नहीं तू गाड़ी चोरी कहवाई पहला तारो बापू पछी एनो के लो खाओ जोता जाओ मारा बाप आज तारा ससरा चाले वकील को भी अपने लगते हैं और भक्तानी को भी अपने लगते हैं क्या है इसको बोलते हैं व्यापिनी शक्ति आलिंगनी शक्ति अपनापन की शक्ति मिसेस डॉक्टर आई तो नहीं लगे क्या महाराज मिस्टर डॉक्टर आए तो मारा अने पेशेंट आए हुए तो अरे ये तो डॉक्टर ने कहवा तो बापू तो मारा है वो आदमी कितना अभागा है कि 125 करोड़ से अलग मैं विशेष धनवान मैं विशेष सत्तावान अलग थलग पड़ गया और वो आदमी कितना बड़ा है कि सबको अपना लगता है विशेषता नहीं है सोलमा है हिंसा दुष्ट दमन शक्ति अज्ञान नाशिनी शक्ति किसी भी प्रकार का अज्ञान हो तो उस महापुरुष को पूछो और उसके ऊपर से वो पर्दा खोल के बता देंगे दान शक्ति अर्थात पुष्टि और बुद्धि का दान देने वाली और 18वीं है भोग शक्ति प्रलयकाल स्थूल जगत लीन और 19वीं है वृद्धि शक्ति प्रकृति संवर्धन संरक्षण वेदों की रक्षा शुद्ध ज्ञान का प्रकाश करने का सामर्थ्य ये भगवान के स्मरण मात्र से आपकी छुपी हुई भगवत शक्तियां जागृत हो जाती राजाई और कमला दो सहेलियां थी दोनों की शादी जहां हुई वो दोनों मूर्ति पड़ोसी थे परीसा भागवत और नामदेव राजाई तो नामदेव की पत्नी और कमला पड़ोस में भी आई कमला के पति ने ऐसी कोई साधना की जिससे भगवती प्रसन्न हुई और धन धान्य मिल जाए मां पारस तुम दे सकती हो मां ने कहा लो ये पारस परीसा भागवत छटांग भर 50-60 ग्राम रोज सोना बनावे बेच के खूब भंडारा करे घर की चीज वस्तुएं लाए छटांग 500 रुपया रोज तैयार तो 100 रुपये तोला 500 रुपया अत्यारे तो छटांग भर के 1.5 लाख होता है उस जमाने 500 होता है घर में सुख समृद्धि धन धान्य भंडारा करे और ये नामदेव बापू कीर्तन करे फिर कुछ घर में रोजी रोटी खत्म हो जाए तो दो दिन दर्जी का काम करे और पैसे आ जाए चलो हरि स्मरण जहां भी बुलावे वहां चले जाए दिन बीते सप्ताह बीते और वर्षों की कतार बीती परीसा भागवत धन धान्य संपदा से कमला को और अपने आप को बड़ा भागशाली मानते और राजा ही अपने को मानती कि पतिदेव तो धर्मात्मा है लेकिन खाने पीने का भी ये हमारा क्या पाप है एक दिन कमला को जच गया कि राजाई मेरे पति भी बाहर गए तुम्हारे पति भी बाहर हैं इस पारस ले जा और तू जितना भी सोना बनाए तो 1-2 दिन में बना ले फिर चीज वस्तु खरीद के घर में ठीक ठाक कर दे राजा ने कर दिया नामदेव आए तो देखते हैं कि घर की रौनक बदल गई है कहीं गलीचे आ गए तो कहीं कपड़े आ गए कि शक्कर के डब्बे भर गए हैं गुड़का पूरा का पूरा कोल्हापुरी गुड़ का ढेला आ गया है आधा सिर गुड़ लेते थे तभी एक मन गुड़ का ढेला ये सब कैसे आ गया राजा ने सुना दिया कि ऐसे ऐसे मेरी बहनपणी मेरी मित्र कमला से पारस मिल गया और ये बनाया नामदेव कहते हैं भगवान में मन लगाए तो देखो नामदेव क्या करते हैं गरीब गुरबों को बुला के ला जिसको जो चाहिए ले जाओ बाकी जो बचा सिर पे उठाया तुम भी उठा बाहर जहां कुछ ठाकुर जी के मंदिर पे फुटपाथ पे जहां बैठे वहां बांट के अब तू घरे जा पारस मेरे को दे दे पारस लेके नदी के किनारे गए कि माजा विठला तुमची प्रीति दया ने है काय देते हमाला नहीं पाई जे वो ममता। बड़े बड़े धनी लोग तो सुख सुविधा भोगकर नरकों में पड़े, क्या मेरे को आप नरक देना चाहते हैं? जितना संसार की सुख सुविधा उतना कूड़ कपट बेईमानी दगा विलासिता बेईमानी और फिर नरकों में। तो पांडुरंग क्या आप मुझे नरकों में भेजना चाहते हैं? नहीं, मैं तो आपकी शरण हूं। ये पारस पारस मेरे को नहीं चाहिए, असली पारस तो तुम आत्म रूप में हो सदा। तुम्हारे संकल्प से सृष्टियां बनती है, पारस बनते हैं, और मैं एक पारस उसे जरा सोना बना के उलझ जाऊंगा। किसको ठगते हो महाराज? लो, अपने से दूर करने के लिए मां खिलौने देती कि हमको दूर करना चाहते हो, ऐसा करके पारस फेंक दिया। ओ जिससे ये 19 प्रकार की दिव्य शक्तियां जागृत होती है, वह ओंकार का गुंजन। पांडुरंगा जितनी देर उच्चारण उतना शांत, भगवत विश्रांति योग में चले गए, ध्यान मग्न हो गए, आनंद शांति। वहां परिसा भागवत भी आए बाहर गांव से, पत्नी को पूछा क्यों उदास है, तो उसने सारा बता दिया कि ऐसा ऐसा मेरे को क्या बुद्धि सूझी, मैंने राजाई को दिया पारस, राजाई ने सोना बनाया चीज वस्तु लाई, लेकिन उनके पति नामदेव और सब बांट दिया, घर खाली कर दिया, पहले जैसा कर दिया, और पारस ले गया नदी में फेंक दिया, आराम करके बस ले तिगड़े मैं आता जातू। ओम नामदेव जी, नामदेव के ओ परिसा भागवत मैं ध्यान करतो, असली पारस है, तुम्ही असली पारस गया, हा नकली पारस मुफच्चा गया ते मुफच्चा खाया च मुफच्चे बीचा देते बसा अने हा मोमाया सोडून द्या। माला सत्संग नहीं पाहिजे, माला माझा पारस द्या लवकर, पारस तुम्ही टाकले तिकडे, माला द्या पारस, तुम्ही संत आहे, दुजे दुसरा होतो ना, तुम्ही तो गला पकडतो फेक पकडतो, मी तो मारतो, तुम्हाला मी हात जोडतो, माझ्या बाई मां माझे माई बाप माला कृपा करन माझ्या पारस द्या। अरे मैं तुम्हाला तुमच्याच पारस देणार आहे, हा नकली पत्थरचा पारस है, असली पारस तुमच्या आत्मज तुम्हाला कधी प्रगट। माला असली वसली काय नाही, उपदेश नाही पाहिजे, माझा सत्संग नाही पाहिजे, माला माझा पारस द्या। इतना ही मी तर टाकलंय, कोई टाकलो माझा पारस द्या, माझा पारस द्या, मैं तो ऐसा मारूंगा नहीं उसके जैसा। नामदेव ने देखा कि ये तो आपे से जा रहा है, थामा थामा थामा, जंप मारा नदी में और एक चुल्लू भर के कई पारस लाए, तुम चा पारस तुम्ही शोधनीय खोज लो। जिस पत्थर को उठाए और कोई लोहे का टुकड़ा लगाए तो पार, दूसरा पत्थर तीसरा, इतने सारे पारस एक साथ। नामदेव ये क्या है? बोले क्या है, कैसा है, क्या है, क्या है ये, तुम कथा मत सुनाओ, तुम्हारा पारस खोज के दिखाओ मेरे को। बोलते तुम्हारी कथा नहीं है चाहिए तो मैं भी तुमको बोलता हूँ क्या है कैसा है, ज्यादा वार्ता करो ना, का तुमचा पारस तुम शुद्ध में माला माहित नहीं पड़त। अरे जिसको तुम पहचानता नहीं उसको मेरा पारस बोलता है, और जो तुमको भूलता नहीं उसको अपना नहीं मानता, कैसा है या तो तुम मूर्ख है या तो मैं मूर्ख हूं। परीक्षा भागवत कहते तुम ही तो महान संत आए, मीज मूर्ख आए। मीरो तो कुट तो आता माला हा पारस नहीं पाई जी, तुम चा कड़ी जो सत्य पारस है वो माला दीक्षा दिया साधना करे अन्य अंतर आत्मा ची प्रीति घेतो। नामदेव का पहला शिष्य परीक्षा भागवत मुरारी बापू ना, वो कथा करने जाते तो हनुमान जी का दर्शन करके जाते होंगे। किसी पुजारी ने कहा कि बाप जी आप तो हनुमान जी को इष्ट मानते हैं तो आज मंदिर में नहीं आए। बोले वो कथा के रास्ते है ना उधर में हनुमान जी, वो तो जूना मंदिर है, जूना मंदिर में तो पुराने हनुमान जी, वो तो बूढ़े हो गए, उनमें क्या शक्ति है। मैंने नया मंदिर बनाया है, नया मंदिर बनाया, जवान हनुमान है। तुमने जो दर्शन किया वो पुराना मंदिर है, बूढ़े हनुमान जी, बूढ़े तो क्या करेंगे बेचारे। अब ये पुजारी मोरारी बापू जैसे को भी पटाने की भाषा करता है, स्वार्थ बुद्धि कैसी खराब कर देता है। तो ईश्वर के सिवाय आप कहीं भी मन लगाओगे तो मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में भी रहो, तब भी कारना में वही करोगे जिसके लिए हम बोल नहीं सकते। और आपको ईश्वर का महत्व समझ में आए इसलिए सत्संग करो। यस्य सुमरण मात्रे न मुच्यते सर्वबंधनात्, जिसका सुमरण मात्र तुम्हारे बंधनों को काट देता है। तो ईश्वर में मन लगाना हो तो ईश्वर को ही कहो कि महाराज आप सत स्वरूप हैं, आप चेतन स्वरूप हैं, आप आनंद स्वरूप है, ये हमने सुना है। संसार असत है, जड़ है, दुख रूप है, धोखे से भरा है, ये हमने सुना है। फिर भी हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं कि संसार में मारे जाते। तेरी भक्ति दे दे प्रभु, तेरी प्रीति दे दे मारा नाथ। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम। झूठ मूठ में भी कहो और रो तो ठाकुर जी बोल देंगे चलो झूठ मूठ में भी मेरे लिए तो करता है ना। ओए हो, यस्य स्मरण मात्रे ना। बोले पति मर गया और पति की याद आती है, डरो मत, खूब याद करो पति को। इनकार करेंगे तो और होगा, लेकिन पति की याद करते करते सोचो कि तुम्हारे पति एक सामने खड़े हैं और उधर भगवान खड़े, तेरे पति तेरे तरफ भी देख रहे, भगवान के तरफ भी देख रहे। भगवान भुजा पसारे हुए हैं, तेरे पति थोड़ा थोड़ा भगवान के तरफ जा रहे हैं और भगवान बड़ा बड़ा कदम से पति के तरफ जा रहे। ऐसा रोज ध्यान करते 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 अब ऐसा करो, अब तेरे और तेरे भगवान और तेरे पति में दूरी कम हो गई। कुछ दिन के बाद ऐसा कोर्स दिया और तेरे पति भगवान के चरणों में गिर पड़े, भगवान ने उठाया, आलिंगन किया और तेरे पति भगवान में समा गए, ऐसी साधना बताई। वो पति के लिए रोने वाली भगवान का साक्षात्कार कर लेती। झूठ मूठ में भी भगवान का तो सुमरण है, मरा हुआ पति याद आता है, लेकिन अमर आत्मा की याद करता हूं वो भगवान के तरफ जा रहा। पति की सदगति में वृद्धि हो गई और पत्नी के सद्भाव में वृद्धि हो गई। यस्य स्मरण मात्रे न मुच्यते सर्व बंधनात्, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। उस परमेश्वर को नमस्कार है। कैसे भी तुलसी अपने राम को रिज भजो या खीज, भूमि फेंके उगेंगे उल्टे सीधे बीज। हे हरि, हे गोविंद, हे परमेश्वर, हे देव, हे बाझारा साईं, हे दाता, बार बार सुमरण करो। अभी तो भगवान के नाम का तुमुल ध्वनि पैदा करो जिससे आपके पाप नाशिनी शक्ति, पाप वासना ही मनुष्य को गिराती, पाप नाशिनी शक्ति बनेगी हर सोच्चारण से, कार्य साफल्य शक्ति बनेगी दीर्घ उच्चारण से, और भगवत विश्रांति योग मिलेगा प्लुत उच्चारण से। इतना सरल उपाय है, फिर संसार में क्यों बचना। प्रभु के लिए सब छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, लेकिन प्रभु को नहीं छोड़ो। और सब के लिए प्रभु को छोड़ोगे तो सब तो टिकेगा नहीं, शरीर मर जाएगा तो सब क्या टिकेगा। न प्रभु मिला न सब मिला। और प्रभु के लिए करोगे तो सब अपने आप मिलता है ना। मैंने कांच की केबिन कभी बनाने की आइडिया नहीं दी, सब अपने आप बनाते। ये सब होता रहता है, यस्य सुंदरण मात्र न। बापू ने तो क्या हा हा सूझ। बापू को देखकर सबको होता है कि बापू जैसी जिंदगी बहुत बढ़िया है, लेकिन बापू को कभी नहीं होता कि प्रधानमंत्री बनना बहुत बढ़िया है। बापू के दुआ से ये हो गया वो हो गया, लेकिन बापू को तो कभी नहीं होता कि चलो अपन ऐसे हो जाए, सेठ बन गया वो, ये हो गया। बापू को ऐसा नहीं होता मैं ये हो जाऊं। सतृप्तो भवती वह तृप्त है, स अमृतो भवती वह अमृतमय है, सतरती वह तरता है, लोकांतार्यति बबलूंतार्यति। बबलू भी तर जाते कि नहीं। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, क्या जादू है तेरे जोग में, क्या जादू है तुम्हारे बबलुओं में। बोलो तो एक बबलू जिसका नाम रामदत्त, तो शिक्षक के लिए फूल चुनने जा रहे थे। ए छोकरा, ए इधर आओ, क्या बाकी जैसे हमें बैठ जा, क्या नाम है। ये घटना बता रहा हूं तुमको, प्रयागराज मालकोट की। रामदत्त पिता का नाम था पुण्य सदन, माता का नाम था सुशीला, बेटे का नाम था रामदत्त। संत ने बुलाया, पंचगंगा घाट काशी में हूं, पाठशाला संस्कृत में पढ़ते थे। क्या करता है, मैं संस्कृत पाठशाला में पढ़ता हूं, तो फूल क्यों चुराता है। बाप जी हमें आश्रम में फूल चुनकर अपने माधवानंद जी गुरु जी है ना, उनके लिए ले जाता था। अच्छा, संस्कृत पढ़ता है, माधवानंद जी का विद्यार्थी है, क्या पढ़ता है। मध्यमा पढ़ता हूं। लघु कुमती हो गई, हाँ इको यंची का रूप बनाओ तो वह चार रूप बनते आई हूं ये वह जो भी कुछ अकार उकार हम यण स्यात, ठीक ठीक है। लेकिन ये संसारी विद्या पढ़ता है बेवकूफ कहीं का, इतनी अक्कल नहीं है कि संसारी विद्या पेट भरेगी, दिल कब भरेगा। तू जाओ अपने गुरु जी को बोलना, राघवानंद को बोलना, बाप जी बुला रहे, राघवानंद को बोलना, राघवानंद जी बुला रहे। माधवानंद को आ, राघवानंद बाप जी मिले थे और आपको याद करे। हैं इतने बड़े संत मेरे को याद करे, संत की नजर और संत की मेरे लिए स्मृति, आज मैं धन्य हूं तेरे जैसा शिष्य पाकर संत की मुलाकात करा देता। रामदत्त तू धन्य है। आचार्य राघवानंद जी के पास शिक्षा गुरु माधवानंद जी ने प्रणाम दंडवत किया। राघवानंद कहते हैं कि माधवानंद तुम्हारा वो रामदत्त विद्यार्थी लड़का तो बड़ा अच्छा है, सुशील है, लेकिन उसको तुमने रटारटी में क्यों धकेल दिया है। जगत की विद्या क्या दे देगी, और तुमको पता है वो युवावस्था आते ही तो स्वर्गवास हो जाएगा, तो ये लौकिक विद्या पेट भरने की विद्या क्या करेगा। मच्छर कोई विद्या नहीं सीखता तो भी पेट भर लेता है। बड़े बड़े राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मंत्रियों को भी ठुंगा दिखा के मच्छर छटक जाता है। प्रधानमंत्री तो तेरी कुर्सी पे मच्छर की अक्कल के आगे प्रधानमंत्री हार जा, बापू भी हार जाए, बेटा भी हार जाए। ये मच्छर को अक्कल कौन देता है? बड़े बड़े डॉक्टर भी हवा खाते रह जाए, मच्छर को ऐसी अक्कल देता है, भूं भूं करके कान में गाना गाता है और ज्यों तुमने पकड़ने की कोशिश की ठिंगवा दिखा के चला जाता है। ये कितना तुम्हारी अक्कल पर तमाचा मार रही प्रकृति। धन जोबन का करे गुमान सो मूर्ख मंद अज्ञान, मत कर रे गर्व गुमान गुलाबी रंग उड़ी जावेगो। तो ये मच्छर को जो जीने खाने की बच्चा पैदा करने की अक्ल देता है, तुम वही विद्या पढ़ा रहे हो उस विद्यार्थी को जो जवानी आते आते चल बसेगा। तुमको पता नहीं क्या? माधवानंद बोले, आचार्यवर मैंने उसकी हस्तरेखा देखी, आयुष्य ज्यादा नहीं है, लेकिन क्या किया जाए? क्यों, मनुष्य लाचार मोहताज है क्या? वो तो भगवान को पुत्र बनाने की विद्या जानता है, भगवान को सखा बनाने की विद्या जानता है मनुष्य। अपने शिष्यों को ऐसा ऐसा युक्ति दिया कि भगवान आए वरदान मांगे कि तुम्हारे जैसा पुत्र दो तो भगवान भी मेरे जैसा तो मैं हूं, आ गए राम बन के कृष्ण बन के। क्या भूल गए क्या? महाराज जी सत्य है लेकिन मेरा सामर्थ्य नहीं। सामर्थ्य नहीं तो भेज दो मेरे पास जो आज्ञा हो। राघवानंद ने अपना विद्यार्थी, वो राम माधवानंद ने अपना विद्यार्थी संत राघवानंद के चरणों में भेज दिया। उच्चारण करो, ध्यान करो और ईश्वर ऐसे हैं वैसे हैं सत्संग सुनते सुनते ईश्वर में जरा चस्का लगा दे। जब मृत्यु काल आया तो गुरु ने थोड़ी कृपा कर दी, समाधि में चले गए, मौत का समय निकल गया। जो जवानी देखने के पहले ही मौत को गले लगने वाला रामदत्त, वह 111 वर्ष तक जिए और रामानंद संप्रदाय के संस्थापक वही रामानंद स्वामी आज राम मंदिरों में पूजे जाते हैं। रामानंदी साधुओं को पता है हम रामानंदी संप्रदाय के हैं। कहां तो मौत के मुंह में जाने वाला लड़का और भगवान की स्मृति कराकर उसी लड़के में से रामानंद स्वामी रामानंद संप्रदाय के संस्थापक महापुरुष 111 वर्ष तक जिए। यस्य स्मरण मात्रेण मुच्यते सर्व बंधनात्, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः।